نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہم میں سے بہت لوگ چاہتے ہیں اور ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے، مزاج ہوتا ہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، میری غم اور پریشانیاں سب دور ہو جائیں، میں خوش رہوں. تو خواہش تو ہم رکھتے ہیں، اور صرف مسلمان نہیں بلکہ جو کفار ہوتے ہیں، منافقین ہوتے ہیں، جو غیر مسلم ہوتے ہیں، ان کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے. تو یہ وہ خواہش ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے، اس میں کوئی مذہب کی بھی تخصیص نہیں ہے. تو اور صرف دنیا کی خوشی اور عافیت، چین، سکون نہیں مانگنی چاہیے، خواہش رکھنی چاہیے، بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی خوشیاں اور عافیت مانگنی چاہیے. کیونکہ اللہ پاک نے ناراضی کا اظہار فرمایا قرآن پاک میں کہ جو شخص دنیا کا طالب ہوگا تو اس کو دنیا دیں گے، اور جو آخرت کا طالب نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت نہیں ہے. تو بہت سے لوگ جو ہے صرف دنیا کے غموں سے چھٹکارا پانے کے چکر میں رہتے ہیں، اتنی غم بھرا سی کوئی بات ہو جائے، اتنا ٹینشن، ڈپریشن، جب کہ وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو آگے جو ہولناکیاں بھی شروع ہوں گی، نزا کے وقت، قبر کے وقت، حشر کے وقت، موت کے وقت، بھائی اس کا بھی تو سوچنا ہے نا. تو دونوں جگہ عافیت سے اور خوش رہنے کی اور سکون سے رہنے کی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. عافیت کی دعا مانگے، لیکن عافیت پھر دارین. دارین کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ تھی عافیت، اللہ عافیت دے دے، لیکن ہوتا ہے اللہ کا عافیت دارین عطا فرما، یہاں سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں صحیح معنی میں. دیکھو یہ بندہ یہاں بھی دنیا بھی عافیت، چین، سکون مانگ رہا ہے، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی شروع ہوگی وہاں کی بھی عافیت مانگ رہا ہے. تو دونوں عافیت دارین مانگنی چاہیے. تو عافیت کی بہت بڑی اہمیت ہے. اب عافیت کے اوپر بات چلیے تو عافیت کی تشریح لوگوں کو کم پتا ہے، سب بتاتا رہتا ہوں. علماء کرام فرماتے ہیں عافیت، تو محدثین نے اس کی تشریحات پیش کری ہیں، وہ یہ کہ عافیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کو اتنا رزق دیں گے کہ کبھی کسی کو اس کا کبھی اس کو محتاج نہیں بنائیں گے غیر اللہ پاک، کہ کسی سے قرض ادھار لینا پڑے یا پیسے مانگنے پڑ رہے ہیں، اس کو تنگی ہو رہی ہے، پورا نہیں پڑ رہا. تو اتنا اس میں کروڑ پتی ارب پتی بننا نہیں ہوتا، اتنا ہے کہ اللہ عزت کے ساتھ زندگی اس کی اچھے احسن طریقے سے اس کی گزروا دیں، اور مخلوق کا محتاج نہیں کرتے. ایک تو ہوگی یہ چیز. دوسری چیز عافیت میں کہلاتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو کوئی ایسی بیماری نہیں دیں گے، بہت کوئی ایسی بڑی بیماری کہ بستر پہ پڑ جائے، ہگنا مٹنا بستر پر ہو رہا ہے، گھر والے بھی تنگ ہو گئے بےچارے، پریشان ہو رہے ہیں. مسجدوں میں کہتے ہیں نا امام صاحب کو پرچہ دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں امام صاحب کہ بس ابا کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما دے، یا برداشت نہیں ہو رہا ان سے بھی اور ہم سے بھی، اتنے سال ہو گئے بستر پہ پڑے ہیں، ان کا ہگنا مٹنا بستر پہ ہم کراتے ہیں، اب بول نہیں رہے بےچارے، لیکن بس یہ کہ عافیت کی دعا کرانے کی نہیں، بس جلدی ان کا دم نکلے. تو یہ دنیا کی حقیقت ہے بھائی. تو اس میں نزلہ بخار نہیں آتا عافیت. اللہ پاک نے اگر بڑی بیماریوں سے بچایا ہوا ہے تو ہم شکر ادا کرنا چاہیے چلتے ہاتھ پہ. اور بڑے بڑے ارب پتی، کھرب پتی بھی ہیں، سب لوگ کہتے ہیں جب تک پیسہ نہیں آیا ہوا عافیت ملی نہیں، تو یہ غلط سوچ ہے. بڑے بڑے ارب پتی، کھرب پتی ہیں، ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں کھا سکتے، دال کا پانی پینے کا کہا ڈاکٹر نے، کیونکہ کینسر کا مرض ہو چکا ہے میرے میں، پیسہ کتنا ہے پتہ ہی نہیں، ارب پتی ہیں، لیکن آدھی ایک روٹی، ایک نوالا روٹی کا نہیں کھا سکتے. تو پتہ چلا پیسہ تو آ گیا لیکن عافیت چھین لی اللہ پاک نے، عافیت نہیں ہے. تو اللہ پاک اتنا پیسہ بھی دیں گے، اللہ کسی کو محتاج نہیں رکھیں گے، بڑے بڑے بیماریوں سے بھی اللہ پاک بچا کے رکھیں گے، اور ایسے غموں سے اللہ بچا کے رکھیں گے جس سے انسان کی ہڈیاں نکل آئیں اور اس کی چربی گلنے لگے. بہت کہتے ہیں تو بہت طاقتور تھا، کیسا ہو گیا یہ بندہ، بالکل دبلا پتلا سوکھا، بالکل ہڈیاں نکل رہی ہیں. تو بعض ایسے روگ، ایسے غم لگ جاتے ہیں انسان کو کہ وہ آدمی کا کھڑا ہونا اور چلنا پھرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، بغیر سب کچھ صحیح ہوتا ہے. تو یہ اب عافیت نہیں رہی. اور تیسری کیا علماء کرام فرماتے ہیں عافیت کی تشریحات میں، کہ اگر فاسق، فاجر، گناہگار ہے لیکن ہے بندہ مومن، ایمان والا ہے، تو اللہ پاک مرنے سے پہلے پہلے اسے تقویٰ کی دولت دے کے پھر موت دیتے، تیاری کرواتے ہیں آخرت کی. مرنے سے پہلے پہلے اللہ پاک اس کو ہدایت دیں گے کہ اب غفلت کی زندگی سے بیدار ہوگا، اپنے فرائض واجبات پورے کرے گا، گناہوں سے بچے گا، فکر کرے گا موت کی، قبر کی، حشر کی. بس اس حالت میں پھر اس کی موت آئی کہ اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائے گا. और चौथी तशरी क्या, खुद तो मुत्तकी नेक बन गया लेकिन अगर उसके बीवी बच्चे गुनाहगार हैं तो अल्लाह उसके बीवी बच्चों को, उसके अहलो याल को भी दीनदार मुत्तकी बनाएगा। तो ये सारी चीजें आफियत के अंदर आती है। तो बताएं, आफियत तो सारी सब कुछ तो आ गया, आफियत के अंदर बचा गया कुछ, बचा मजे मजे। तो इसलिए हमारे प्यारे आफियत हो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह से आफियत की दुआ मांगा करो, और एक ऐसी दुआ है जो अल्लाह पाक चाहता है, हदीस पाक में बोले जो अल्लाह पाक चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे आफियत की दुआ मांगे। एक तो हम अल्लाह से कहते हैं अल्लाह ये दे दे ये दे दे, अल्लाह चाहते हैं मेरे बंदा सब मांग लेकिन ये जरूर मांगे, मेरी चाहत है वो क्या है, आफियत से दारैन की दुआ, अल्लाह यहाँ भी मजे से रख और जब मैं मर जाऊं तो खात्मा ईमान के साथ फरमा और दखूल जन्नत मेरा फौरन हो जाए। कनेक्टिंग फ्लाइट के थ्रू ना हो, कनेक्टिंग फ्लाइट होती है ना, एक होती है डायरेक्ट फ्लाइट, एक होती है कनेक्टिंग फ्लाइट और एक डायरेक्ट फ्लाइट। तो डायरेक्ट फ्लाइट जन्नत की आदमी पकड़ेगा, यहाँ रूह प्रवास करे और यहाँ जन्नत में दखूल, पता ही नहीं चला जन्नम क्या है अजाब क्या है, ऐसी मौत मांगे आदमी। और इसमें सही सारी चीजें आफियत में आती हैं। पागलो मजाक में कहते हैं जाएंगे तो जन्नत में, लेकिन पता है फिटते फिटाते जाएंगे, है ना, जन्नत में जलते जलाते, भाई ये मजाक की बातें नहीं है। तो बचना चाहिए, डरना चाहिए। तो हजरत आला रहमतुल्लाह हमारे प्यारे मुर्शिद आरिफ बिल्लाह हजरत अक़दस हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब ने इरशाद फरमाते थे कि ऐसे अमाल की फाइल तैयार रखो कि तुम्हारा हमारा जिसका जैसे ही हमारी रूह परवास करे बस फौरन ही जन्नत में दाखिला हो जाए। ये है जिंदगी गुजारने का ढंग। फायदा क्या, फिटते फिटाते अगर गए तो जलते जलाते गए, सही ना। और वहां पर एक दिन जो है दुनिया के 80,000 साल के बराबर है, अगर एक दिन भी जन्नत में जलना पड़ा दुनिया के 80,000 साल कहाँ हमारी जाने बर्दाश्त कर सकती है सारी चीजें। तो क्रिश्चे कहानियों की बातें नहीं है। तो एक तो अल्लाह पाक चाहते हैं दुआ मांगे, इसी तरह से हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लम के चचा, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको अपनी खराबदारी का वास्ता देता हूँ, आप मेरे भतीजे हैं, मैं आपका चचा हूँ, मुझे कोई ऐसी खास नसीहत करें जो आपने दूसरों को ना बताएंगे, कोई राज की बात हो खास। आपने इरशाद फरमाया मेरे प्यारे चचा आप अल्लाह से आफियत मांगा करो। नहीं तो आम बात है आप सबको बताते हैं मैं आपको आपका चचा हूँ, दोबारा फरमाते हैं मैं आपको अपनी खराबदारी का वास्ता देता हूँ, मुझे कोई आप खास नसीहत करें। दोबारा यही फरमाया मेरे प्यारे चचा आप अल्लाह से आफियत मांगे। फिर तीसरी दफा इसरार किया तो फिर आप सल्लल्लाहु यही फरमाया मेरे प्यारे चचा, प्यारे चचा आप आफियत से दारैन मांगे अल्लाह से, दोनों जहां में अल्लाह पाक आफियत दे आपको, बस फिर वो खामोश हो गए। तो इससे बड़ी अहमियत क्या होगी, बाकायदा दुआएं हैं, आप ने मसनून दुआएं भी सिखाई हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुक अल आफियत फिर दुनिया और आखरा, या अल्लाह हम तुझसे सवाल करते हैं दुनिया और आखरत में आफियत से रहने का, अब सवाल। और ये भी दुआएं अल्लाह पाक हम तेरी पना चाहते हैं अचानक आफियतों के छिन जाने से, पता चला आफियतें छीन भी ली जाती है, छीनती क्यों भाई, कोई अल्लाह का मिजाज ऐसा नहीं है कि ऐसी अल्लाह का दिल चाह और अल्लाह ने आफियत छीन ली। तो मुफस्सरीन और मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ये आफियत अक्सर जो छीनती है ये गुनाह कबीरा की वजह से छीन ली जाती है। और जब अल्लाह पाक फैसला कर लेते हैं किसी बंदे को मुसीबत में मुबतला करना है तो फिर वो फरिश्ते भी छोड़ के चले जाते हैं उस हालत में, क्योंकि उनको अल्लाह का ऑर्डर आ जाता है। ये बड़ी गहरी बात है कि वो फरिश्ते हिफाजत के वो भी चले जाते हैं, कि जब इंसान हदों को तोड़ जाता है बिल्कुल शैतान बन जाता है तो फिर एक वक्त तक अल्लाह पाक देखते हैं, फिर उसके बाद आफियत छीन दी जाती है उसकी, फरिश्ते हटा दिए जाते हैं, फिर जो बला ना है वो कम है। तो आदतन गुनाहों में जो बवाल, आदतन गुनाहों में रहने का बवाल बड़ा खतरनाक होता है, अल्लाह की तरफ से नहीं होता कि बंदा सीधा सीधा जा रहा हो तकवे से रह रहा हो और अचानक आफियत छीन ली। हाँ वो ठीक है, कभी कभार आजमाइशें आ जाती, इसलाह और उसमें भी उसकी इसलाह और तरबियत छुपी हुई होती है, इसलाह और तरबियत छुपी हुई होती है, वो अल्लाह का अजाब नहीं होता, वो आफियत छीनी नहीं होती, वो इसलाह होती है, तरबियत होती है अल्लाह की, वो एक अलग मामला होते हैं भारत। तो हम शख्स हर शख्स हम लोगों में से हमें अक्सर लोग यही चाहते हैं हम चैन और सुकून और आफियत के साथ रहें। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सबसे बड़ी जो रुकावट है चैन सुकून की और आफियत की वो कहलाती है गुनाह। गुनाह गुनाह अक्सर बताता रहता हूँ, ये सब गुनाह का तो शाखसाने जो बड़ी बड़ी कौमों पर अजाब आया था, कौम आद के ऊपर, कौम तमूद के ऊपर, कौम लूत के ऊपर, पुराने पाक भरा पड़ा है, कहीं चिंगाड़ आई तो लोगों के कलेजे फट गए, कहीं तेज हवा आई आंधी आई सबको तबाह कर दिया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उसको गर्काब कर दिया गया। ये सारी चीजें क्या थी, ये अल्लाह की नाफरमानी और अजाब तो थे, यहूदियों को बनी इसराइल के बाद लोगों को जो अल्लाह ने सुअर और बंदर बना दिया था, अल्लाह के साथ मकर किया करते थे, ये सुअर बंदर हम कहते हैं यहूदी बने थे, अक्सर ये बात बयान में दोहराता रहता हूँ, ये सिर्फ वहां तक महदूद नहीं था, उम्मते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी कुछ लोग सुअर और बंदर बनाए जाएंगे। आदिश में बात का में ये जिक्र आ चुका है कि सहाबा कराम डर गए थे, परेशान हो गए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वो मुसलमान होंगे? तो आपने अच्छा फरमाया हाँ मुसलमान होंगे, नमाज रोजे वाले होंगे। सहाबा कराम और परेशान, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जिल्लत की वजह क्या होगी? फरमाया दो गुनाहों की वजह से। फरमाया कि एक तो मौसीकी गाना बजाना, मौसीकी और गाना बजाना, दूसरा शराब नोशी। शराब नोशी और कहने दूसरे नंबर पर आ रहा है, पहले आ रहा है मौसीकी और गाना बजाना। एक रात ये लोग मौसीकी नाच गाना करके और फिर ये शराबे पी के सोएंगे, सुबह उठेंगे तो इनकी शक्लें मस्त होंगी, सुअर और बंदर बने होंगे। ये बड़े बड़े उलमा कराम ने किताबों में या हदीस में बार बार लिखी है, लेकिन आज कोई मुसलमान हम में से कितने लोग जो मौसीकी से बच रहे हैं? बड़े बड़े दीनदार लोग भी पास नहीं आ रहे, इस हकीकत को समझ नहीं रहे, मोबाइल पे लगे रहते हैं सारा सारा दिन, क्या मौसीकी नहीं आती मौसीकी में? तो कहते हैं जी मैं गाने वगैरह को नहीं सुनता रहे, आप उसमें जो खबरें आती हैं ब्रेकिंग न्यूज वगैरह बैकग्राउंड में कितने म्यूजिक चलते रहते हैं। आजकल तो कोई चीज ऐसी है ही नहीं जिसमें म्यूजिक ना हो, आजकल तो दीनी चीजों में पीछे कुछ नहीं तो फ्लूट बजती रहती है, बांसुरी बजती रहती है, क्या वो बांसुरी फ्लूट बांसुरी क्या म्यूजिक नहीं है? कहीं अल्लाह ना करे सैलाब और अल्लाह का अजाब भी अगर दिखाते हैं तो वो म्यूजिक की टून के साथ, है ना, मौके के एटमोसफेयर के हिसाब से वो म्यूजिक लगा दी जाती है, म्यूजिक छोड़ना ही नहीं है। तो कुरान पाक की तफसीर भी हो रही होती है तो पीछे बैकग्राउंड में हा हा करके अजीब हो गरीब कुछ ना मुझे नहीं चुटकला छोड़ना है भाई, तो सीधे सीधे कर लो ना तफसीर तर्जुमा कुरान पाक की, पीछे बैकग्राउंड में कोई टच देने की जरूरत क्या है? पता है खाना हजम नहीं हुआ क्या? ये मौसीकी के बगैर लगता है कि हमारा गुजारा नहीं होगा, डरना चाहिए। इतने बेदीन लोग क्या बोले, दीनदार लोग बार बार मोबाइल से उसकी खुराफात से शक्लें देखते रहते हैं, शक्ले से ये नहीं कि लड़की ना महरम की ना, वो गुना है शरीफ मसला 1400 साल से यही चलता आ रहा है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ने भी ये लिखा सब ने, ये तो अभी उलमा कराम ने कुछ मजबूरी की बिना पे कुछ थोड़े बहुत गुंजाइश के फतवे दिए थे, वो उसकी उसके मामला कुछ अलग है, लेकिन जो हराम है वो 1400 साल से हराम है और वो तकवे का आला मेयार वही है कि किसी भी जानदार की शक्ल देखना या बनाना देखना जायज नहीं है, चाहे वो आदमी आदमी को देखे, गधा घोड़ा कुत्ता कोई भी जानदार शय है उसको देखना या उसकी तस्वीर बनाना तस्वीर कशी हराम है। ये तो पुराना एक 1400 साल से इज्मा चलता हुआ है, अब लोगों ने तो ये चीजें पता ही नहीं है लोगों को। कितने ऐसे नौजवान मिले पढ़े लिखे समझदार, जब उनसे बात हुई तो हैरान हो गए, मैंने कहा तो आपसे हम पहली दफा ऐसी बातें सुन रहे हैं, हमने तो नहीं सुनी कभी, हमारे घर में तो किसी ने बताया नहीं। आजकल बेचारे यंगस्टर को पता ही नहीं है कुछ दीन का, ये तो बिगनर लेवल की छोटी छोटी बातें हैं, ये मौसीकी नाच गाना और तस्वीर 50-50 इंच के LCD लोगों के घरों में लगे हुए होते हैं, माँ बहन बेटियां सब बैठे होते हैं, बोसो किनार देख रहे होते हैं, गंदे मनाजिर देख रहे होते हैं, म्यूजिक चल रहा होता है, फिर उसके बाद अल्लाह की पकड़ आती है तो कहते हैं पता नहीं हमसे कौन सा ऐसा गुनाह हो गया। तो गुनाह हमारे जमरे में गुनाह कहता है हमारी नजर में है क्या? लोग ये हम लोग इतने आदि यूज्ड टू हो चुके हैं इन गुनाहों में कि इन गुनाहों को तो गुनाह समझते ही नहीं, ढूंढते हैं कि इसके और क्या हमने ऐसा गुनाह किया है, और टीवी देख रहे हैं तो उससे क्या होता है? भाई मखलूत माहौल में आप जा रहे हैं, मूवी तस्वीरें बनाते हैं शादी में, ये गुनाह नहीं है? नहीं ये तो गुनाह नहीं है, तो कोई रिवाज करने जा रहे हैं तो अभी तो अक्सर लोगों को पता ही नहीं, गुनाह भी दबा के कर रहे हैं खूब बड़े बड़े गुनाह कबीरा, और नफ्स और शैतान यही कहते हैं कि पत्नी मुझसे कौन सा गुनाह हो रहा है, यानी ये गुनाह नहीं है। पत्नी गुनाह को क्या समझ रहे हैं? किसी को कत्ल करेंगे या जिना करेंगे या क्या करेंगे जो फिर दिल कहेगा हाँ शायद हमसे गुना हुआ है, तो ये गुना नहीं है क्या? सारे गीबत सुबह से लेकर रात तक हम करते रहते हैं, मरे हुए भाई का गोश्त खाना है, कितनी खतरनाक वही दे गीबत के ऊपर, गीबत से कितने लोग हम लोग बचते हैं। तो ये गुनाह के जो मामला आते हैं ये बड़े खतरनाक हैं, तो चैन सुकून कहाँ से मिलेगा? गुनाह होते रहेंगे और उसके बाद जो है हमारे मामला खराब होते रहेंगे, तो ये सोचना चाहिए कि किस तरह से मामला सुधरेंगे। तो सुकून आफियत से का जो दुश्मन है सबसे बड़ी चीज वो होती है गुनाह, तो जो आदमी जितना गुनाहों से बचता है उतना सुकून और चैन से रहता है। हर चीज के साइड इफेक्ट होते हैं ना, हम कभी बाहर के खाने वगैरह खाते हैं कहते हैं नहीं यार ये नहारी सही नहीं है, पाए सही नहीं है, फना चीज सही नहीं है, इसमें चर्बी होती है, घी होती है, तो मैं तो परहेज ही खाता हूँ। यानी मैं परहेज, परहेज का क्या मतलब होता है? बचना, मैं बचता हूँ, परहेज करता हूँ जी इन चीजों से, मैं परहेज यानी बचता हूँ, खाना तो खाता हूँ लेकिन साफ सुथरा बाहर का नहीं, परहेज करता हूँ इन चीजों से, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, 10 बीमारियां लगती हैं। तो बहुत से लोग एहतियात करते हैं, अच्छी बातें करनी भी चाहिए, तो जिस तरह खाने पीने के साइड इफेक्ट होते हैं इसी तरह दवाइयों की भी होते हैं। बहुत से लोग दवाइयां नहीं खाते कि इसके साइड इफेक्ट बहुत होंगे, दैनिक साइड इफेक्ट उर्दू में क्या रद्द अमल, हर अमल का रद्द अमल होता है। तो जब सारी चीजों के साइड इफेक्ट है तो क्या गुनाहों के साइड इफेक्ट नहीं होंगे, उसका रद्द अमल नहीं होगा? इस तरह ध्यान ही नहीं है, गीबत कर रहे हैं, ये सब जमा हो रहा है, करामन कातिबीन बैठे हैं लिख रहे हैं ये सब। और फिर होता क्या है, जब बंदा आदतन गुनाहों में मजबूर रहता है, हराम काम करता रहता है, गुनाह छोड़ने पे तैयार नहीं होता, इसलिए की फिक्र नहीं होती, तौबा भी नहीं करता, अल्लाह पाक देखते हैं फिर कि ये तो बाज नहीं आ रहा, भाई हमने तो उसको बहुत लंबी मोहलत दी, शायद अब सुधरे, शायद अब सुधरे, शायद इस लगी फिक्र हो, शायद अब तौबा कर ले, शायद अब गलत चीजें छोड़ दे। लेकिन जब बंदा बहुत आगे तक दौड़ जाता है, निकल जाता है, फिर अल्लाह का तकनीकी निजाम हरकत में आता है, फिर अल्लाह पाक उसकी इसलाह के लिए, ये मोहब्बत छुपी है मसला समझने। दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो फाशिक फाजिर तो होते हैं, और जितनी बदमाशियां, जितने गुनाह, जितने हराम काम करते हैं, उतनी अल्लाह की इनायतें रहमतें बगैर नजर आएंगी, और अल्लाह की तरफ से बगैर चैन सुकून नजर आएगा उसकी जिंदगी में। एक हदीस पाक का खुलासा है, नकल है हमारे प्यारे आपे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम किसी फासिक फाजिर गुनाहगार का ऐश इशरत देख के तुम अल्लाह से शिकवे शिकायतें मत करो, हसरत मत करो, तो क्योंकि तुम नहीं जानते आइंदा उसके साथ क्या होने वाला है। बाज लोग कहते ना, मैं तो गला सारा टेढ़ा चलता हूँ, फौरन अल्लाह की तरफ से सख्ती आ जाती है, वो देखो कितने आराम काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इतना बदमाशियां कर रहा है, उतनी नियमतों में देख रहा हूँ मैं तो उसको। बाज लोगों के दिल में ये इश्काल पैदा होता है, तो उसका जवाब आप इरशाद फरमा रहे हैं, इसकी वजह ये कि तुम नहीं जानते कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। यानी बाज लोगों को उलमा कराम फरमाते हैं ऐसा गुब होता है बाज लोगों से अल्लाह को, अब अल्लाह के बारे में भाई हमें क्या पता, अल्लाह के बाकी मामला से अल्लाह ही वाकिफ है सबके। तो बाज लोग अल्लाह पाक के जितने नाफरमान होते हैं और अल्लाह को उनसे खौफ होता है उनके किसी अमल की वजह से, वो हमें नहीं पता, लेकिन ये बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है, वरना अल्लाह की रहमत तो बहुत गालिब होती है। तो अल्लाह पाक देखते हैं, तो अल्लाह पाक को नहीं चाहते अल्लाह पाक की ये तौबा की तरफ रुजू हो और मेरी तरफ आएगी, तो जितनी गुनाह करेगा, जितनी बदमाशियां, उतनी उसके मजे, उतनी नेमतें, तो धोखे में पड़ जाएगा कि अगर वह बुरा आदमी होता तो नेमतें होती, तो तौबा की तरफ, इसलाह की तरफ वो तवज्जो ही नहीं होगा, तो इसी हालत में उसकी मौत आएगी फिर, और अल्लाह पाक कहेंगे अब मैं तुझे बताऊंगा, अब बताऊंगा तुझे, अब आओगे तो जितना भी हिसाब किताब होगा नजा के वक्त शुरू हो जाएगा, जो भी उसके अमल, फिर वहां जो धुलाई पिटाई और उसकी सफाई होगी उसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता वो क्या होगी। तो एक किस्म के वो लोग हो गए, और एक किस्म के कौन से लोग हो गए, वो ये अल्लाह के प्यारे महबूबीन है, लेकिन वो अल्लाह की तरफ उस हिसाब से नहीं आते जिस तरह से अल्लाह पाक उनको देखना चाहते हैं, तकवी की दौलत के साथ, लेकिन नहीं आते हैं प्यारे। तो आड़ा टेढ़ा वो चलते हैं तो फौरन अल्लाह की तरफ से हल्की सी चपत लगती है, हल्की सी परेशानी आ जाएगी, तो वो टेढ़े होते होते एकदम से सीधे जाएंगे, जैसे गधा घोड़ा चल रहा होता है ना, कि देखा ना ट्रैक पे चलते चलते अचानक क्या करता है, वो आड़ा टेढ़ा चलने लगता है, तो पीछे बैठा हुआ जो चला रहा होता है घुड़सवार या कोचवान जो भी होता है, पीछे चाबुक मारता है, जैसे चाबुक मारता है वो फौरन सीधा हो जाता है, तो चाबुक पड़ते रहते हैं तो वो घोड़ा गधा सही चलता रहता है ना बिल्कुल। तो हम में से बाज लोगों का भी ये मामला है, तो अल्लाह की तरफ से हल्के फुल्के वो चाबुक पड़ते रहे तो बिल्कुल हम सीधे सीधे ट्रैक पे चलते रहेंगे, और जहां अल्लाह ने हमें ढील दी, जहां सख्ती छोड़ी, जहां मजे कराए, एक महीना भी नहीं गुजरता फिर देखें फौरन बंदे शुरू हो जाएंगे, हाँ वो देखें ऐसी गुजर रही है यार, मोबाइल लेके बैठ जाएंगे, नाच गाने, गलत चीजें देखना शुरू, ढील मिल गई ना अल्लाह की तरफ से। बाज लोगों का मामला अल्लाह की तरफ से बड़ा सख्त होता है, जरा सा आउट जाते हैं फौरन अल्लाह की तरफ से सख्ती आती है, तो ये प्यारे और अल्लाह के महबूब बंदे, ये जुल्म नहीं है, ये सख्ती नहीं है अल्लाह की तरफ से, बल्कि जुल्म और सख्ती तो उस ये कहलाएगी कि जितना आदमी गुनाह कर रहा है अल्लाह उसको आजाद छोड़ दे, कुछ नहीं हो रहा उसके साथ, खुदा की कसम ये सख्ती है, अल्लाह को परवाही नहीं, जा बेटा इसका जितना तुझे करना कर ले, कोई सख्ती नहीं आ रही, कोई उस पर अजाब नहीं आ रहा, कोई पकड़ नहीं आ रही, ये है सलमान में सही सख्ती, क्योंकि जब अल्लाह की पकड़ आएगी कभी दुनिया में आखिरत में, तो फिर चीख मारने की नहीं, चीख भी नहीं निकलेगी, सख्ती है। और जो जरा सा चलता है और अल्लाह की तरफ से इसलाह के फैसले वो हो जाते हैं जिसके लिए, और उसको हिदायत मिलने लगती है और गुनाह छोड़ देता है, तो अल्लाह का प्यारा मुबारक बंदा है और अल्लाह की रहमत है उसके ऊपर, अल्लाह का प्यार उसको मिल रहा है कि अल्लाह ने उसको उसके हाल पे नहीं छोड़ा कि बंदे तू आजाद है जो चाहे कर। हमारे प्यारे आकिद जहां सुस्तम की हदीस शरीफ का खुलासा है कि जिस पर अल्लाह का फजल होता है उसे दुनिया में नकद सजा दे दी जाती है, जिस पर अल्लाह का फजल होता है दुनिया में उसे नकद सजा दे दी जाती है, आखिरत के लिए कोई बार उसके लिए नहीं उठा के रखा जाता, लेकिन ये दुनिया में सजा भी कब मिलती है कि जब बंदा गुनाहों से बाज नहीं आता और तौबा नहीं करता, अगर भाई तौबा कर ले आदमी तो ये नफ़त से भी दुनिया में आदमी को ना मिले, तो दोबारा फिर आफियत से और सुकून के साथ उसकी जिंदगी गुजरना शुरू हो जाएगी। और परेशानी आती है अक्सर, जो आजमाइश तो कभी कभार आती है, वो तो 5 या 10% रेशो होता है। लोग मुत्तकी होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, उन पर भी बड़ी बड़ी बार दफा आजमाइश आ जाती है, लेकिन ऐसा कम होता है। हमारा जो वास्ता पड़ता है ज्यादातर 90% वो गुनाहों की वजह से पड़ता है, जो हम अक्सर परेशान रहते हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में जगह जगह फरमा तो दी कि तुम्हारी तकलीफें तुम्हारे ही अमाल का नतीजा है। और अगर हम लोगों के गुनाहों के सबब, आयत का खुलासा है, हाथ के हाथ फौरन पकड़ करना शुरू कर देते तो रोए जमीन पर तुम्हें कोई मुतनफ़ सांस लेने वाला भी नहीं मिलता। यहाँ गुनाह हुआ और यहाँ हमने पकड़ कर ली तो बदला पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। अल्लाह फरमा रहे हैं हमारा तरीका नहीं, हम ढील देते हैं, देखते हैं, शायद शायद एहसास हो जाए, शायद तौबा कर ले। लेकिन जब वही बात, एक वक्त तक होता है मामला अल्लाह की तरफ से ढील का, लेकिन जब बंदा आदि मुजरिम हो जाता है और गुनाह नहीं छोड़ता, किसी आदतन गुनाह में मजबूर रहता है, तो फिर अल्लाह की तरफ से फिर पकड़ आ जाती है। और पकड़ आने का मकसद भी क्या, भाई तौबा कर ले, वो परेशानी खत्म हो जाएगी। और डिग्रियां होती हैं अल्लाह की तरफ से, मसला समझने, जैसे पुलिस की बात मशहूर है ना, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, तो अल्लाह की तरफ से डिग्रियां आती हैं गुनाहों की। जैसे कभी कोई परेशानी हल्की फुल्की आ गई, कभी उसकी जान में कोई परेशानी आ जाती है, कभी बीवी बीमार हो जाती है, या कभी बच्चों में कोई मसाइल खड़े हो जाते हैं, कोई ना कोई तकलीफ आदमी को रहती है, तो ये हल्की परेशानी है। तो उस पर यही तरीका, अपने मुहासबा करें अपने अमाल का, नमाज रोजा कुरान, तो ये जो कुरान पाक अल्लाह का जिक्र और नमाज है तो बुनियादी, और खास तौर पे फजर की नमाज देखे कि बाद जमात हो रही है 5 वक्तियां, नहीं खास तौर पे फजर की नमाज। शिकवे करने को हम बैठ जाते हैं लेकिन अपने अमाल की तरफ ध्यान नहीं देखते। एक बंदे ने कहा शेर की अशार की शक्ल में, ए खुदा तू मेरा हाल देख, ए खुदा तू मेरा हाल देख, आई एक आवाज बंदे, ए मेरे बंदे नामा अमाल देख, ए खुदा तू मेरा हाल देख, आई एक आवाज बंदे नामा अमाल देख। हम रोते गाते थे फजर की नमाज, हम में से कितने लोगों की होती है, रमजान में तो सभी पढ़ लेते हैं माशाल्लाह, वो भी 10-12 दिन की कहानी है। अभी जोश जो नजर आता है ना शुरू में, थोड़ा पहले इशरे में रहमत का छपड़ा नजर आएगा, माशाल्लाह खूब तरावियां, बाहर तक बच्चे शोर मचा रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, 15 रमजान में आप देख लीजिएगा मस्जिदों की रौनक खत्म होना शुरू हो जाती है। हम अपने बचपन में देखते थे कि आखिरी रमजान तक माशाल्लाह मस्जिदों की रौनक बाहर रहती थी, लेकिन अब 10 दिन का जोश होता है मस्जिदों में। आप में बेचारे जो पाबंदी से कुछ लोग तरावी पढ़ रहे होते हैं 1-1.5 सफ में, वही लोग खड़े हुए होते हैं, सन्नाटा होता है मस्जिदों में, रौनक के काम। तो हफ्ते एक अशरे के बाद या 15 दिन के बाद, 15 रोजे के बाद, तो फिर ध्यान ये हो जाता है हमारा, शॉपिंग की तरफ चला जाता है, टारगेट ईद हो जाता है, सब भूल गए कि मफरत का अशरा चल रहा है, दूसरा फिर तीसरा अशरा जहन्नम से निजात का, इसमें रो रो के लैलतुल कदर, इसमें अल्लाह से दुआएं मांगनी मफरत की, वो बाजारों में गुजारते हैं, तो वक्त का भी अलग है, तो समझ में ही नहीं आता किस तरह से जिंदगी गुजारनी है। लाल लोगों तक तकून अल्लाह चाह रहे हैं, तकवा हमें हासिल हो जाए, नहीं हम गुनाहों को छोड़ने वाले बन जाए। बात ये हो रही थी कि नकद सजा मिल जाती है जिन जिन लोगों को, तो जिन पर अल्लाह का फजल और रहमत होता है, तो वही बात होती है कि नकद सजा भी उन लोगों को दी जाती है जिन पर अल्लाह का फजल होता है और जो तौबा नहीं करते। अब तौबा का मसला क्या है भाई, बार बार ये दोहराता रहता हूँ कि भाई मासूम सिर्फ अंबिया कराम की बात होती है, मतलब ये नहीं है कि हमसे कोई गुनाह ही ना हो, ये नहीं है, मतलब ये है कि किसी भी गुनाह कबीरा में हम लोग आदतन मुब्तला ना रहें, कभी हो जाए तो रो रो के सजदा गाह को आंसुओं से तर कर लें, गुनाहों को छोड़ दें, अल्लाह से माफी मांग लें, और फिर पाक हो जाएंगे। अगर फरमाते थे तकवे से रहना इतना आसान है जैसे बावजू रहना, वजू टूट गया दोबारा वजू कर लो, दोबारा अब बावजू हो गया खत्म। फरमाया तकवा टूट गया, बदनजरी हो गई, गुनाह हो गया, तौबा कर ले, मोबाइल पे बैठ गया, गलत चीज देख ली, एहसास होना चाहिए असल चीज अल्लाह का डर, एहसास खौफ तो, गुनाह नहीं छूट रहा है तो कम से कम आदमी को एहसास तो कि मुझसे क्या ना फरमानी हो रही, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। हदीस में बार में मज़मून आ चुका है, अल्लाह कभी बेशी में 70 या 100 दफा अगर कोई शख्स तौबा कर रहा है दिन में किसी गुनाह से, और 70-100 बार दिन में दिल से अगर सच्ची तौबा कर रहा है तो उसकी 70 बार तौबा कबूल है। शर्त क्या है, जिस वक्त तौबा कर रहा हो उस वक्त उसका तौबा शिकस्त तौबा का इरादा ना हो, तौबा तोड़ने का इरादा ना हो, वो अलग बात है कि तशरी में इसकी के बशरी तकाजों की वजह से फिर नफ्स और शैतान को गुनाह करा रहा, लेकिन जिस वक्त गुनाह कर रहा हो उस वक्त अल्लाह पाक देख लें कि वाकई मुखलिस और आइंदा गुनाह नहीं करेगा, सच्चे दिल से तौबा कर रहा है। तो अगर दिन में तो मिसाल है 70 और 100 बार, तो मिसाल देने को कहते हैं 1000 बार भी तौबा करना है तो 1000 बार भी तौबा उसकी कबूल है। और ऐसा आदमी भी मुत्तकी तकवे के दायरे से उसका इखराज नहीं होता, ऐसा शख्स भी मुत्तकी है। हजरत वाला रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे, बंदे को दो चीज बचाती है अल्लाह की पकड़ से, एक तो तौबा इस्तिगफार, दूसरा तकवा। फरमाया अगर तकवा तुम्हारा कच्चा है, तकवा नहीं अगर तुम्हें हासिल हो रहा है, तो कम से कम तौबा इस्तिगफार तो मत छोड़ो। अब पता चला ना तौबा है ना तकवा, ना गुनाहों से तौबा करता है एहसास भी नहीं और ना तकवा, तो क्या हुआ? हजरत ने फिर अब मरेगा। हजरत अली करेंगे जो फरमाते हैं एक आयत की तशरीह में, तफसीर में, एक आयत अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक आप इन लोगों के दरमियान में हैं और जब तक ये इस्तिगफार तौबा करते रहेंगे तो ये हमारे अज़ाब से बचे रहेंगे। तो हजरत अली करम अल्लाह ने फरमाया कि लोगों, एक दरवाजा जो रहमत का था जिसकी वजह से अज़ाब रुके रहते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आज हम में नहीं रहे, लेकिन एक दरवाजा ऐसा जो क़यामत तक के लिए खुला हुआ है, हर शख्स उससे फायदा उठा सकता है, वो है तौबा इस्तिगफार को लाजिम पकड़ लो, इस्तिगफार की बरकत है। और एक जगह अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया, हमारा ये तरीका ही नहीं है कोई शख्स इस्तिगफार कर रहा हो और मुझ पर अपना अज़ाब भेज दूं। बताइए कितनी बड़ी चीज है इस्तिगफार, कि भाई गुनाह नहीं छू, अगर आदमी को छूट रहा है तौबा इस्तिगफार तो कर ले, बशरी तकाजे हैं जो कुछ भी उसके साथ हो रहे हैं, तो भाई तौबा तो ना छोड़े, तौबा भी नहीं करे। बाद लोग कहते जी मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिगफार भी करता हूँ, तस्बीह फेरना अलग होता है, दिल से तौबा अलग है, मसला समझ लें। तो आजकल की तस्बीह नहीं, तस्बीह फेरू किसको फेरू, तस्बीह फेरू किसको फेरू वाला मामला नहीं होना चाहिए। लोग 5-5 हजार बार इस्तिगफार करते हैं, लोग ऐसे ऐसे लोग मिले लेकिन किसी औरत को नहीं छोड़ते आती जाती। तो भाई ये तस्बीह फेर रहे हो तुम, दो 3-3 हजार इस्तिगफार पढ़ो। इस्तिगफार का मतलब क्या है? इसकी तशरीह पे गौर किया, तर्जीह पे गौर किया, या अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह तो तैयार है बख्शने को। सही मायने में अल्लाह की मदद रहमत तौबा की असल शक्ल ये होती है कि अल्लाह से ये बोले अल्लाह पाक कि फला फला मैं गुनाह करता हूँ। जैसे मोबाइल पे कोई शख्स बैठा हुआ है, आजकल तो मोबाइल पे ज्यादातर गुनाह होते हैं, तो मैं बदनजरी कर रहा है, गलत वेबसाइट पे कोई जाता है, तो अल्लाह से तन्हाई में बैठ के कहे अल्लाह पाक आज के बाद मैं गलत वेबसाइट पे नहीं बैठूंगा या मोबाइल का मैं कम इस्तेमाल करूंगा, वक्त जरूरत करूंगा, अल्लाह अब तक जो हुआ तो मुझे माफ फरमा दे। तो उन गुनाहों का इकरार करना है, इकरारी मुजरिम बनना है कि अल्लाह मैं ये गुनाह करता हूँ, अल्लाह को तो सब पता है लेकिन अल्लाह हमारे दिल का रुझू देखना चाहते हैं। ये बताओ जनरल इस्तिगफार है, अल्लाह पाक माफ फरमा दे मेरे गुनाहों को, माफ फरमा दे, दुआ मांगते हैं अक्सर लोग, इस्तिगफार भी पढ़ते हैं, एक एक तस्बीह, दो 3-3 तस्बीह, 1-1 हजार दफा, लेकिन गुनाह फिर भी चल रहा है। तो भाई ये कैसा इस्तिगफार है? इस्तिगफार करें कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन तौबा भी तो करें। जिन जिन गुनाहों में आदतन उतर है तो फिर काम बनेगा। जो अल्लाह का मकसद मशीयत ही होती है, अल्लाह पाक हमारे अंदर तब्दीली देखना चाहते हैं कि पिछले गुनाहों की तौबा देखना चाहते हैं। तो जिन जिन गुनाहों में हम लोग आदतन उतर है उनसे हम लोग जाहिरी बात नहीं, जितने भी गुनाह हैं चाहे वो कोई भी गुनाह हो, हर इंसान का अलग मामला होता, पता है हम में से कौन लोग क्या क्या गुनाह करते हैं, तो तन्हाई में बैठ के हम लोग उन गुनाहों को सोचें, मुराकबा करें और फिर उसके बाद अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करें कि अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। और कभी तौबा टूट जाए फिर दोबारा तौबा कर लें, तो बार बार तौबा करने से नफ्से हमारा कमजोर पड़ने लगता है और फिर तकवा नसीब हो जाता है। बाद लोग कहते हैं फायदा क्या, गुनाह तो छूट नहीं रहा तौबा से। भाई हमारा काम जितना उतना करना है, खुदा नहीं बनना है हमें, हमें अल्लाह की बंदगी अता करनी है, अल्लाह की बस अल्लाह के हुक्म को मानना, पाक करना, गुनाहों से हिदायत देना अल्लाह का काम है। हम अपना काम करें अल्लाह अपना काम करेंगे, खुदा बन के क्यों सोच रहे हैं? हिदायत हम अपने आप को खुद थोड़ी देंगे, हिदायत तो अल्लाह देगा। तो गुलाम का जो काम होना चाहिए नौकरी चाकरी, और अपने आका की बंदगी वो हम करें। गुनाह नहीं छूट रहा है, रोना धोना तो ना छोड़े, तौबा तो ना छोड़े, पता गुनाह भी नहीं छूट रहा है, रो भी नहीं रहा है, तौबा भी नहीं कर रहा है, तकवा भी नहीं है, लगे पड़े तो क्या होगा? फिर क्या होगा? शिक्षा साहब ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे गुनाह कैसे कम होंगे, मेरे गुनाह कैसे कम होंगे? तो उसने कहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे तौबा इस्तिगफार से, रोने से और बीमारियों से। पहले बीमारियां नहीं आ रही, पहले आ रहा है तुम्हारे तौबा इस्तिगफार करने से गुनाह कम होंगे, फिर तुम्हारे रोने से गुनाह कम होंगे, तीसरे नंबर पर आ रहा है फिर बीमारियों से। अब क्या मतलब? जब जो ना तौबा करेगा ना रोएगा तो फिर तस्कीन तो होगा ना, पाक तो करना है गुनाहों से, तौबा कर नहीं रहा, इसलाह करा नहीं रहा, तो वो जमा हो रहा है अल्लाह का प्यारा महबूब, तो कैसे वजन कम होगा गुनाहों का, मौत भी करीब है, क्या करेंगे फिर अल्लाह पाक? तो फिर अल्लाह पाक को हल्की फुल्की को बीमारी को बला को मुसीबत को परेशानी ऐसी डाल देते हैं जिसके जरिए उसका तस्कीन होने लगता है, उसके जरिए पाक होने लगता है, यहाँ तक के मौत तक वो पाक साफ होके एक फूल की तरह छोड़ जाता है। तो भाई ये खतरनाक तरीका है, ये खतरनाक तरीका है, बहुत ज्यादा खतरनाक तरीका है ये। और फिर अगर, और वो भी गुनाहों पर डिपेंड करता है कितने। बाज लोगों की दुनियावी परेशानियों में गुजरती है गुनाहों की वजह से, हरामकारी भी ऐसे, और जब मर जाते हैं तो नवा के वक्त से भी धुलाई पटाई शुरू, फिर कब्र में अजाब भी दिए जा रहे हैं, फिर जहन्नम में भी जलाया जा रहा है। ये कुछ लोगों के ये अमाल का ताल्लुक अल्लाह को पता है किसका क्या मामला है। कुछ लोगों को जान की जान करने की तकलीफ ही उनको गुनाहों से पाक कर देती, फिर उनके लिए ना अजाब कब्र है ना जहन्नम की आगे, और वो जान करने की तकलीफ उठाए उन्होंने और अल्लाह ने उनको पाक कर दिया और वो जन्नत में चले गए। अब कोई इतना गुनाहगार है कि जान करने की तकलीफ भी उठा रहा है, फिर उसको कब्र में अजाब भी भुगतना पड़ेगा, उसको वो भी भुगत रहे हैं। कुछ लोग इतना गुनाहगार है कि जान करने की तकलीफ भी उठाई, उसके बाद जो है कब्र में भी अजाब भुगत रहे हैं और फिर उसको जहन्नम में भी चलना पड़ रहा है, आलम बरज़ख में भी अजाब चल रहा है उनके ऊपर। तो ये सबके अलग अलग मामला था, और ये अल्लाह को पता है बातनी अहवाल से किसके। तो ये सारे स्टेजेस हैं, तो ये बड़ा खतरनाक मसला है गुनाहों को। दुनिया भी परेशानियों से गुजरती है और मरने के बाद भी फिर धुलाई पटाई चलती रहती है, आफियत नहीं मिलती ऐसे लोगों ने दुनिया में ना आखरत में। गालिब ने कहा था ना, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएं, अब तो घबरा के कहते हैं मर जाएं, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएं। अभी कहते ना बस यार जिंदगी से तो मौत अच्छी है, मरो तो जान छूटे। भाई जान कहां छूटेगी, नहीं और पकड़ में आ जाएगी। जो छोड़ने वाली चीज गुनाह वो तो छोड़ते नहीं। बाद लोग मर गए, खुदकुशियां कर ली उन्होंने, लेकिन अल्लाह को उन्होंने अल्लाह की तरफ नहीं आए। मेरे जिंदगी में ऐसे लोग मैंने देखे कि बहुत उनको प्यार से समझाया। हजरत वाला रहमतुल्लाह भी उस वक्त हयात थे, हजरत के पास भी कुछ बाज लोग थे, उनके पास लेकर गया मैं, बस यही कहा कि अल्लाह को पकड़ लो सारे गम खत्म हो जाएंगे, अल्लाह परेशानियां दूर कर देगा। लेकिन बात समझ में नहीं आई, फिर खुदकुशियां कर ली बेचारों ने, मर गए। दायमी जहन्नम अपने सीने से लगा ली उन्होंने। बताया खुदकुशी करना को मामूली बोला है वो उलमा कराम ने ये फरमाया आज तो उसकी कभी खुलासी नहीं है जहन्नम से, सारी जिंदगी जन्नत में जले हो। ये नहीं है कि कुछ अरसे में पाक साफ करके अल्लाह उसको जन्नत में भेज देंगे। इतना जबरदस्त अजाब है कि लोग बाज लोग मर जाते हैं लेकिन गुनाह छोड़ने पे तैयार नहीं है, तकवे की तरफ आने पे तैयार नहीं है। बड़े बड़े मसाइब उठा लेते हैं लेकिन नहीं उठा लेंगे, लेकिन अल्लाह की तरफ आना तकवे से रहना उनके लिए मुहाल है, उनके लिए मुश्किल है। तो भाइयों कैसे काम बनेगा, कैसे काम बनेगा, कैसे मसाइल होंगी, कैसी परेशानियां दूर होंगी। आज सब ये कहते हैं, कितने फोन आ रहे हैं मेरे पर, मैसेज आ रहा है रमजान आ गए, जरा को खास नसीहत कर दिए, को खास अमाल बता दे रमजान से मुताल्लिक, खास अमाल। अब उसमें इल्म वाले लोग भी हैं, बड़ी बड़ी उम्र रशीदा लोग भी हैं, लेकिन अफसोस होता है कि इतनी छोटी सी बात भी अभी तक हमें नहीं पता। अल्लाह पाक कुरान पाक में क्या फरमा रहे हैं कि रमजान से मुताल्लिक, इसलिए तुम पर रोजे फर्ज कर रहा हूँ लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें तकवा नसीब हो जाए। तकवा किसे कहते हैं, कितने लोगों ने कहा तकवे का मतलब ही हमें आपके पास आके पता चला है, पता ही नहीं था। कहीं कहता परहेजगारी लिखा हुआ है, परहेजगारी भी सही है, कभी तशरीह नहीं होती कुरान पाक में, तो ऊपर अलग उसकी साइडों में उसकी तफसीर लिखी हुई होती। तो तफसीर अक्सर लिखा होता है कि परहेजगारी, लोग समझते हैं परहेजगार होना ये शायद नमाज होगा, ये भी परहेजगारी। असल परहेजगारी का मतलब परहेज यानी बचना, किस चीज से बचना, गुनाहों से बचना। तकवे का मतलब होता है नेक अमाल के साथ गुनाहों से बचना, ये दो अलग अलग चीजें हैं, उसको भी पहले समझना है हमें। हम इसी पे खुश है, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं कुरान पाक पढ़ रहा हूँ, मैं फला दीन के काम कर रहा हूँ, मैं फला दीनी सोहबतों में जा रहा हूँ, फला मेरी मेहनत है, या मैं हाफिज कुरान हूँ, भाई मुबारक है। लेकिन तकवा एक बिल्कुल अलग चीज है। एक शख्स आया, उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज रोजे से मुताल्लिक सवालात किए, आपने जवाब दी, फिर उसने तकवे के मुताल्लिक कोई बात करी तो आपने अजीब इरशाद फरमाया कि तुम तकवे को ज़ाहिरी इबादात के बराबर मत करार दो, तकवा बहुत बड़ी चीज है। मैं फरकेट कर दिया, रसूलुल्लाह ने तकसीम कर दिया कि ज़ाहिरी अमाल करने वाले एक अलग चीज है, तकवा तकवे को उसके बराबर मत करार दो, तकवा बहुत आला बहुत ऊंची चीज है। और जो चीज आला और ऊंची होती है तो भाई उसका फिर मजा ही कुछ और होता है, और फिर वो कम लोगों को नसीब होती है, सही है ना। तो हमें यूनिक लोग होते हैं जिनको तकवा हासिल है, एक हजार के पूरे पूरे खानदान में लोग होते हैं, दीनदार होते हैं, माशाल्लाह बादशाह होते हैं, टखनों से ऊपर पैंचे होते हैं, दाढ़ियां टोपियां भी होती हैं, लेकिन तलाश करेंगे तो एक हजार में से एक भी मुत्तकी मुश्किल से मिलेगा। अक्सर मैं मिसाल भी देता रहता हूँ, चले जाए सखी सन पे बैंकवेट वगैरह लोन बने हैं ना, हैदरी तक कितने बने हैं, जाइए 11-12 बजे 10-11 बजे को भी जाइए, चक्कर लगाइए। अगर तो चक्कर नहीं लगाना चाहिए, ये तो एक मिसाल देने को है, वो भी तस्वीर होती है, मखलूत माहौल होता है। तो वहाँ मेरे और आपके होली वाले दाढ़ी टोपी वाले हैं, एक मुठ्ठी दाढ़ी टखनों से और पैंचे और दीनी सोहबते वाले भी लोग अक्सर वहां बैठे होते हैं, जबकि आप सलसम मना फरमा रहे हैं ऐसी मजलिस जहां अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो मत जाओ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर रहे हैं, उलमा कराम से पूछा, मुफ्तियान कराम से पूछा कभी हमने कि जहाँ ये हराम काम हो रहे हो, गीबतें हो, मखलूत माहौल हो, बदनजरी हो रही हो, दीन बहाना लड़की औरतें लिबास पहनी हुई हो और हराम काम हो रहे हो, म्यूजिक बज रहा हो और पता नहीं कितने गुनाहों की आमाजगा वो जगह बनी हो कि ऐसी जगह जाना जायज होगा। लेकिन किसके पास टाइम है? वो खुश है इसी में नमाज पढ़ता हूँ, पांच कुरान भी पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस शैतान ने इसी यही कह दिया, बस तुमसे बड़ा कोई इस दौर का वजूदा नहीं है। और कुछ लोग कह देंगे बस जो इस दौर में पांच वक्त की नमाज पढ़ ले वो अल्लाह का सबसे बड़ा वजूदा है। ये कहां कहां से जुमले आ गए भाई, विलायत को इतना आसान समझा भाई है? कोई कोई इतनी सस्ती चीज समझी हुई है अल्लाह की दोस्ती, अल्लाह की विलायत। अभी जो पुराने पाक की जो आयत पढ़ी गई थी, मतलब ये अगर पांच वक्त को नमाज पढ़ा, अगर फजर की भी पढ़ा और मोबाइल पर सारी गंदी चीजें देख रहा है और गलत हराम कामों में लगा, पर नमाज पढ़ता है पांच वक्त की फजर के बाद, तो जी बहुत बड़ा अल्लाह का वली है। तो भाई वो दूसरे जो गंदे अमाल कर रहे हैं फिर, इसलिए अल्लाह पाक ने इस बहस को खत्म फरमा दी जो कुरान पाक के शुरू में आयत पड़ी गई है, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, मेरा वली मेरा दोस्त कोई नहीं है सिवाय उसके जो तकवे से रहेगा। हजरत वाला रहमतुल्लाह इरशाद फरमाया, मेरे दिल में बात आई कि अल्लाह ने तकवे की अपनी दोस्ती अपनी विलायत की शर्त दो, ये तकवा क्यों रखी है? अल्लाह ये भी फरमा देते, कर फरमा सकते थे, इन औलियाहु इल्लल तहज्जुदून, तहज्जुद पढ़ने वाले मेरे दोस्त हैं, नमाज पढ़ने वाले मेरे दोस्त हैं, साइमून रोजा रखने वाले मेरे दोस्त हैं। तो बहुत अल्फाज आ सकते थे लेकिन अल्लाह को पता था। हजरत ने फरमाया दिल में मेरे अल्लाह की तरफ से अल्लाह वालों का शिलाम हो जाता है। बाद हजरत ने फरमाया कि मेरे दिल में बात आई बड़े गलबे से, क्योंकि अल्लाह को पता था नमाजी लोग भी गुनाह करेंगे आदतन, तहज्जुद पढ़ने वाले भी गुनाह करेंगे, है ना, रोजा रखने वाले भी गुनाह करेंगे। अब जो गुनाह ही छोड़ गए, गुनाह ही ना करे तो बात ही खत्म हो गई। इसलिए अल्लाह ने अपनी दोस्ती की शर्त रख दी तक्वा। बस जो गुनाहों को, मतलब वही बात कि गुनाहों को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि नबियों की तरह नाउज़ुबिल्लाह मासूम हो गया, मतलब ये कि आदतन किसी गुनाह में उबला नहीं रहेगा। और कभी कभी लफ्ज है कभी का, रोजाना रूटीन नहीं है सुबह से रात तक, कभी खता हो गई। क्योंकि जब कहते हैं अगर पालक बारिश ज्यादा होती है तो हाथी भी फिसल जाता है, आजकल चूंकि गुनाह बहुत है तो कभी गुनाह हो जाए तो वो तौबा कर लेगा इंशाल्लाह, और फिर दोबारा से अल्लाह पाक के दायरे महबूबियत में वो दाखिल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये है तरीका अल्लाह का प्यारा बनने का और अल्लाह का महबूब बनने का, ये तरीका है। तो आज हम लोग देखें कि हम लोग किस मुकाम पे और किधर खड़े हैं, तो तकवा हमें कितना हासिल है। तो अल्लाह ने जो फरमाया कि पूरा एक महीना जो तुम्हें रोजे में रखवा रहा हूँ, कि इस दिन हर साल ही आ रहे हैं। अब मैं से देखें किसी की उम्र 40 है, किसी की 50 है, किसी की 60 है, कितनी उम्र हो गई, और हमारा हमारी जिंदगी में माशाल्लाह कितने जिंदगियों में रमजान हमारे आते हैं आ चुके हैं। तो हम देखें कि अल्लाह की जो चाहत थी लअल्लकुम तत्तकून वो हमें हासिल भी हुआ। हर साल रमजान गुजारना अलग होता है, एक होता है रमजान गुजारना कि शहरी खा ली, अफतार कर लिया, नमाज पढ़ ली, तरावी पढ़ ली, अल्लाह की मशीयत क्या है, तकवा कितना आया। लोग सिपारे पढ़ाते हैं तो बात बता रहा था नसीहत लोगों ने कहा बताएं मैं क्या अमाल करें, क्या अमाल करें, तो परहेजगारी बचना तकवे से रहना। तो लअल्लकुम तत्तकून, तो लोगों को तकवा ही नहीं पता तकवा है क्या। अक्सर लोग मतलब ये नेक अमाल के साथ गुनाहों को छोड़ देना ये तकवा है, तो अल्लाह ये देखना चाह रहे हैं तब्दीली। लोग पुराने पाक की तादाद बढ़ा देते हैं जी, आम दिनों में इतने पढ़ता हूँ, रमजानों में जिक्र अस्कार कुरान बढ़ा लेता हूँ। मुबारक के भाई बढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है। हमारे अकाबिर को भी तरीका है कि दो दो तीन दिन में पुराने पाक खत्म कर लिया करते थे, लेकिन वो तो 24 घंटे के और 365 दिन के मुत्तकी भी लोग हुआ करते थे हमारे अकाबिर। तो पुराने पाक अगर ज्यादा नहीं किसी से पढ़ा जा रहा, जिक्रुल्लाह ज्यादा नहीं किया जा रहा, जो वो रूटीन में कर रहा है अमाल इतने मामूलात वही कर ले, लेकिन अल्लाह के वास्ते तकवा बढ़ाए। लोग कुरान पाक में इजाफा कर लेते हैं, जिक्रुल्लाह में इजाफा कर लेते हैं, तकवे में इजाफा नहीं कर रहा जो अल्लाह पाक देखना चाह रहे हैं। तो कैसे मसला होगा, गुनाह तो फिर भी चल रहा है। और हजरत वाला हमारे मुर्शिद आरिफ हजरत मौलाना शाह हकीम अख्तर साहब इरशाद फरमाते थे, दो ऐसे मजेदार गुनाह हैं हमारे अवामुन नास में कि वो 365 दिन चलते रहते हैं चाहे वो रमजानी क्यों ना हो। फरमाया एक तो बदनजरी, बदनजरी और तो वो लड़कियों को घूरना चाहे मोबाइल पे हो, चलती फिरती हो, बदनजरी तो रमजान में भी लगे होते हैं। और दूसरा गुना गीबत, गीबत। तो ये दो गुना ऐसे हैं कि रमजान में भी चलते रहते हैं, अल्लाह माशाल्लाह जिसको अल्लाह पाक तौफीक दे गुनाहों से बचने की। मशहूर वाकयात में के कुछ लोग ने शिकायत किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर की खवातीन को ने रोजा रखा हुआ है, रमजानों के दिन थे तो उनको शदीद उल्टी आ रही है बहुत, और तबीयत उनकी सही नहीं है, इस तरह से कुछ फरमाया अल्लाह की शिफा फरमाया। आपने फरमाया अगर उनको कह आया तो फिर वो लेकर आओ चीज, उनकी खैर से उनकी उल्टी में क्या चीज निकली। तो गए तो फिर थोड़ी देर उनको उल्टी आई तो देखा था कच्चा गोश्त निकला, खून आलू सच्चा गोश्त निकला। फिर बताया असलम को, दिखाया और हैरान होकर एक घर वालों ने कहा असलम हमारे घर में तो कई दिनों से गोश्त पक्का ही नहीं, तो ये कहां से गोश्त आ गया। तो फरमाया कि तुम्हारे घर की खवातीन ने रोजे की हालत में गीबतें करी थी, ये तो तुमने कुरान पाक की आयत नहीं पढ़ी कि गीबत करना ऐसे से मुर्दा भाई का गोश्त खाना। तो बाज दफा अल्लाह का गजब इसला की नहीं ऐसे नाजिल होता है कि अल्लाह पाक उसकी हकीकत उतार देते हैं, हकीकत में गोश्त उनके पेटों से निकाल दी कि तुमने मरे भाई गोश्त खाए ना तो निकालो इसको। ये छोड़ थोड़ा सा ये बातें हमें समझनी चाहिए भाई, ये गीबत कोई मामूली गुनाह नहीं है। एक शख्स आया तो बात करने लगा तो आप इरशाद फरमाए तुम क्या अपने मुर्दार भाई का गोश्त खा के आ रहे हो मरे हुए भाई का। लेकिन नहीं यार सुनो मैंने तो ऐसा काम नहीं किया। फरमाया मैं तुम्हारी दांतों की झिरियों में थोड़ा थोड़ा गोश्त लगा हुआ देख रहा हूँ। हदीस शरीफ है बंदा मोमिन की फिराकत से डरो अल्लाह के नूर से देखता है। ये आम वलियों की बात हो रही है, नबियों की बात नहीं हो रही। बाब अल्लाह वाले ऐसे होते हैं कि जब वो देखते हैं तो वो नहीं देखते अल्लाह के नूर से देखते हैं। क्या फरमा रहे हैं, कौन तस्दीक कर रहा है, आकद हो जाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बंदा मोमिन की फिराकत से डरो अल्लाह के नूर से देखता है। तो जब अल्लाह वालों का कश्फिराम हो जाता है, जब अल्लाह पाक उनको नूरे फिराकत देते हैं, तो क्या इमामुल अंबिया नबियों के सरदार जिनकी कायनात बनी तो उनकी फिराकत का क्या आलम होगा? क्या उन पर अल्लाह कुछ मुनकशिफ नहीं फरमाएंगे? क्या उनको लोगों के अहवाल का पता नहीं चलेगा? बड़े बड़े वलियों की करामतें मशहूर होती हैं कि बगैर बोले बहुत सी चीजों का जवाब देते हैं, तो इमामुल अंबिया का क्या कहना है? क्या आप को नाउजिल्ला पता नहीं चलेगा? तो वो रसूल अल्लाह सलम की एक नजर थी, वो गोश्त लगा हुआ बगैर नहीं था, लेकिन इसकी इसलाह करी इस तरह से। और रोजे की तकलीफ भी हदीस शरीफ में ये भी है कि रोजा उस वक्त तक तकलीफ नहीं देता, ज्यादा लगता नहीं जब तक कि उसको फाड़ ना दिया जाए। रोजा ढाल है जब तक कि उसे फाड़ ना दिया जाए। उलमा कराम फरमाते हैं मतलब ये है कि गुनाहों से बचने की ढाल है रोजे से, आदमी बहुत से गुनाहों से बचा रहता है और ये रोजा तकलीफ भी नहीं पहुंचाता, ज्यादा भूख प्यास भी नहीं लगेगी, पता भी नहीं चलेगा कब रोजा गुजरा। शर्त क्या है, जब तक गुनाहों से बचा रहेगा, जब तक उसको फाड़ ना दिया जाए। फाड़ने का मतलब है उसको गुनाह करके उसकी तासीर को खत्म कर देना। गुनाह किया तौबा नहीं किया हराम काम करा है, बहुत से लोग टाइम पास करने को रमजान में खबरें देखते रहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज और पे शक्लें, वही तो बता रहा हूँ जो गुनाह समझ ही नहीं रहा है, चाहे रमजान हो या गैर रमजान हो। फिर कहते हैं बहुत शदीद भूख लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही, जबकि दूसरे लोग सुकून से फिर रहे हैं। रोजे को तो फाड़ दिया आपने, रोजे को तो फाड़ दिया, उसकी जो उसकी तासीर थोड़ी है भाई, वो तो एक ढाल का रोजा। जब तक कि उसके हकूक को पामाल ना किया रोजा तकलीफ नहीं देता, मरीज से गुजर जाएगा। ज्यादातर वही लोग परेशान होते हैं रोजे में जो गुनाह करते रहते हैं, तड़पते रहते हैं वो। और सबसे बड़ी फजीलत क्या है रोजे की, अल्लाह ने फरमाया बहुत फजीलत है, बेशुमार जन्नत है और पत्नी कितने उलमा कराम ने हदीस मुबारक लिखी है बेतहाशा। लेकिन सबसे प्यारी सबसे बड़ी सबसे आला चीज जो चीज हमें मिलती है रमजानों में, यहाँ बात खत्म हो जाती है, उसके बाद कोई बात नहीं बचती। नबी पाक हमारे रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने बात कहलवाई कि जो शख्स तकवे के साथ रहता है और ढंग से रोजा रखता है तो उसका अजर मैं खुद हूँ, सारी जन्नत सारे सवाब नेक अमाल अजर सौ सब एक तरफ होगा। अल्लाह फरमा रहा है कि उसका अजर मैं खुद हूँ, यानी मेरी जात उसको मिल जाएगी, उसे मेरा खास कुर्ब नसीब हो जाएगा। रोजा मेरे लिए है और खुद मैं इसका अजर हूँ। शाबान मेरा महीना, अक्सलम फरमाते हैं ना शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है। तो जब अल्लाह की कोई चीज उसमें गंद क्यों डालते हो भाई? किसी को हम हदिया देते हैं तो उसमें कोई गंदगी, किसी को हम कोई खीर बना के दे रहे हैं, खाना डाल के दे रहे हैं, थोड़ी सी गिलावत भी डाल दी, मट्टी भी डाल दी, कचरा भी डाल दिया, कह रहे जी मैंने खीर बनाई थी, तो उठा के पटक देगा कि शर्म नहीं आती ऐसी गंदी चीज दे रहे हो, खीर दे रहे हो तो मैं गिलावत क्यों डाली? तो हम देखे तो भैया हम रमजान के रोजे रख के किस तरह से अल्लाह को पेश कर रहे हैं, क्या हदिया दे रहे हैं तखवे का, रोजों का। कितनी उसमें बदनजरियां होती हैं रोजे में, कितनी गिबतें भी होती हैं, कितनी गालियां भी होती हैं, कितनी फोश कलामी भी होती है, उसमें भी धोखा दही और कितने मामला चलते रहते हैं। कितने लोग हैं जो कारोबारी जिंदगी में होते हैं, वो झूठ बोल के कारोबार बेच रहे होते हैं, जखीरंदोजी अलग चल रही होती है, ब्लैक मार्केट अलग चल रही होती है, महंगी चीजें पुराने वक्तों में उठाई ली पहले की और कहते हैं इसको रमजान में निकालूंगा डबल ट्रिपल कीमत के ऊपर। किसी मुफ्ती साहब से पूछा जखीरंदोजी करना जायज है भी यानी क्या, इसकी तफसीलात ने कभी सीखा? तो हम एक रमजान में से रोजे रखना है कि जी भूखा रहना, भूखा रहने का नाम थोड़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी तशरीहात पेश की है रमजानों में कि आंख का रोजा, कान का रोजा, जबान का रोजा, हाथ का रोजा, दिल का रोजा, दिमाग का रोजा, सोच का रोजा, जिसम के एक आजा का रोजा, मेदे का रोजा, सारी चीजों का रोजा, यानी सारे आजा को हमें बचाना है गुनाहों से। हमने जो पेट में रोटी नहीं डाली वो हमारा रोजा हो गया। खाली पेट को थोड़ी फाका कराना है भाई, ये तो खाली फाका हो जाएगा। जो लोग गुनाह से बाज नहीं आते और कहते हैं रोजा है, रोजा नहीं है, फाका है वो। रोजा तो सारे अजा के साथ मिल के बनेगा, और सही बहने में रोजे में जो जान पैदा हो, यहाँ ठीक है फर्ज अदा हो जाएगा, लेकिन वो उसकी रूह और उसकी हकीकत, वो चाशनी, वो जो अल्लाह की जो चाहत है लअल्लकुम तत्तकून, वो हासिल नहीं होगी। अब अब्बा इसकी मिसाल दिल में आती है, जैसे कोई अब्बा बोले बेटा मुझे वो अंगूर चाहिए, अंगूर लेकर आओ, मैं बहुत शौकीन हूँ। बेटा भागे भागे के केले लेकर आ गया, अब्बा केले लाओ। बेटा ये भी अच्छी चीज है, खा तो मैंने तो अंगूर कहा था, अंगूर चाहिए मुझे तो। वो फिर गया, फिर सेब लेकर आ गया, अनार लेकर आ गया। अरे अब्बा आपने तो एक अंगूर मांगे थे ना, मैं दो डबल चीजें लेकर आया हूँ, मैं केले भी ले आया और सेब भी ले आया और देखे मैं अनार भी लेकर आ गया। अब्बा नाराज होगा, भाई ठीक है ये भी खा लूंगा, अच्छी चीज है माशाल्लाह, लेकिन मैं अंगूर मांग रहा हूँ, अंगूर क्यों नहीं लाकर दू, मेरी असल चाहत वो है। अब बेटा 10 फल और लेकर आ गया, अंगूर लाके नहीं दे रहा। तो अल्लाह भी तो ये फरमा रहा है मेरे बंदे, कुरान जिक्र अस्कार तू बढ़ा रहा है, तादाद तलावियां पढ़ा, मुबारक है, सब कुछ सही है, लेकिन मेरी चाहत है लाल लगुन तत्तखून, ये क्यों नहीं दे रहा मुझे। हम कह रहे हैं आधा पारा पढ़ो ना, एक पारा पढ़ता हूँ ना रोजाना, आप ये ले लें। अल्लाह पाक इतना फिक्र कर रहा है, देखिए मैंने और फिक्र बढ़ा दिया, रमजान आ गया ना, मैं ये भी कर रहा हूँ। देखिए अल्लाह पाक मैं नवाफिल नहीं पढ़ रहा, नवाफिल भी पढ़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा है माशाल्लाह, मुबारक है। एहतिकाफ में बैठ रहा हूँ, अल्लाह पाक 10 दिन आपको दे रहा हूँ, मैं एहतिकाफ में मस्जिद बैठूंगा। अल्लाह कहेगा ठीक है, लेकिन तकवा को देखो, तकवा कहाँ पहुंचा, ये तो दे नहीं रहे हो तुम मुझे। बस तो साइड साइड से कन्निया काट काट के 10 चीजें अल्लाह को पेश की जा रही है, लेकिन तकवा नहीं दे रहे, तकवा नहीं दे रहे। तो भाई फिर वो बात बनेगी नहीं, बात बनेगी नहीं। अल्लाह की चाहत पे हम पूरे उतरे, नमाज रोजा कुरान जिक्र अस्कार मुबारक के माशाल्लाह खूब करें, लेकिन हमें रमजानों में देखना है कौन कौन से आदतन गुनाहों में उबतला है, और उन गुनाहों को बाकायदा सोचें, मुराकबा करें, और तराई में बैठ के माफी मांगे और आइंदा ना करने का अहद करें। अल्लाह आज के बाद इन लानती गुनाहों को छोड़ता हूँ, ये है लाल लगुम तत्तकून। तो गुनाह हो जाए फिर दोबारा तौबा कर ले, 2-3 महीने करे तो सही, फिर देखे नफ्से हमारे की जो ग्रिप है वो ढीली पड़ जाएगी। और शर्म ना करें भाई, शर्म ना करें, इसलाह करा लें। बहुत सी बातें होती हैं वो आधी छोड़ के अल्लाह पाक दूसरा कोई मजमून डाल देते हैं, अब दोबारा मजमून याद आ रहा है जो बीच में पूछ रहा था इनसे। ये भी अल्लाह पाक दिखाते हैं अपनी तौहीद, अगर हमारा फजल ना हो तो मुकर्रर भी बोल नहीं सकता, अल्लाह दिखाते रहते हैं अपनी शान अपनी तौहीद। तो बात ये कह रहा था कि तकलीफें जो आती हैं कब्र में हशर में गुनाहों की वजह से आती हैं, ये बड़ा सख्त सख्त मामला है। क्या मामला है कि दुनिया भी परेशानियां गुजरी और नजा के वक्त भी जान करने की तकलीफ होती है शदीद। आप सुनने इरशाद फरमाया जैसे ऐसी तकलीफ होती है गुनाहों की वजह से, ऐसे जिंदा बकरी की खाल पेश की जाए। हजरत अली करम जो फरमाते हैं तलवार के 1000 बार जिस्म के अंदर वार कर दिए, यानी कटने से की इसी तकलीफ। और उलमा करम फरमाते हैं पैरों के पंजों से निकलना शुरू होती है रूह, फिर मुंह के जरिए निकाली जाती है। तो वो तकलीफ बड़ी खतरनाक होती है। तो ये भाई तो ये सब गुनाहों की वजह से तो है सारा मामला। अब इसका ये खतरनाक तरीका है अल्लाह की तरफ से जब इसलाह होती है, दुनिया की परेशानियां मफाई मौत के बाद कब्र में हशर में फलनाकी शुरू, तो ये खतरनाक तरीका है गुनाहों से पाक होने का और गुनाहों के तस्किए के लिए। तस्किया किसे कहते हैं, पाक होना गुनाहों से। यह खतरनाक तरीका है गुनाहों से पाक होने का, क्योंकि इस बंदे ने तौबा नहीं की, तकवा अख्तियार नहीं किया, इसलिए इसके बाद ऐसा हुआ दुनिया की और आखिरत में। दूसरा क्या तरीका होता है भाई कि आदमी गुनाह में मुब्तला है लेकिन एहसास से गुनाह छूट नहीं रहे, किसी अल्लाह वाले से भाई बैत नहीं हो रहा, इस्लाही ताल्लुक कायम कर लो, कोई जरूरी नहीं। अल्लाह ताला फरमाते थे बैत होना खाली सुन्नत है, बड़ी प्यारी सुन्नत है, नूर आला नूर, लेकिन इस्लाही ताल्लुक कायम करना किसी अल्लाह वाले से इस नियत के साथ कि मेरी इस्लाह हो जाए, ये नमाज रोजे की तरह फर्ज है। हानी साहब रहमतुल्लाह ने मकसद ही किया, ये गुनाह से बचना जब फर्ज है तो उसका मुकदमा भी फर्ज है। गुनाह से बचना फर्ज है ना, तो उससे बचने का जो तरीका है वसीला है वो भी तो फर्ज हो जाएगा। तो इसलिए इस्लाही ताल्लुक कायम करना कि मेरी इस्लाह हो जाए, गुनाह निकल जाए, तो किसी शेख से इस्लाह कराएं, आदतन उन गुनाहों की जो तौबा के बाद और कोशिश के बावजूद नहीं निकल रहा। जो माजी में गुनाह छोड़ दिए वो शेख को ना बताएं, क्योंकि किसी इंसान को अपने माजी के गुनाह बताना जायज नहीं है, शरण हराम है। सिर्फ वो गुनाह भी शेख को वो गुनाह बताएं जो कोशिश के बावजूद नहीं निकल रहे, तो इंशाल्लाह इस्लाह हो जाएगी। जब अल्लाह की तरफ से अल्लाह देख लेंगे बंदे के दिल में मेरा खौफ है, मेरा डर है, ये अपनी इस्लाह कराने में लग गया, तो फिर अल्लाह की तरफ से तकवीनी निजाम हरकत में नहीं आएगा, अल्लाह की तरफ से परेशानियां नहीं आएंगी। जब देख रहे हैं अल्लाह के खुद ही इसको दिल में मेरा डर है, खौफ है, अपनी इस्लाह पे लग गया, तो फिर अल्लाह उसकी इस्लाह नहीं करते सख्ती के साथ। तो ये बहुत ही प्यारा आसान और सहल तरीका है सुकून से रहने का, कि गुनाह भी आदमी का नहीं छूट रहा है, इस्लाम में लगा हुआ है, अब अल्लाह के अख्तियार में। वही बात, जितना अख्तियार में उतना करना है। गुनाहों से पाक शेख नहीं करेगा, गुनाहों से पाक बंदा मोमिन खुद नहीं होगा, अल्लाह पाक करेंगे। अल्लाह से कोशिश देखेंगे उसके दिल में मेरा डर कितना था, वो उसकी तरफ से अल्लाह की तरफ से बचत हो जाएगी। ये हदीस पाक का खुलासा है ना, अल्लाह पाक फिर इस वजह से माफ कर देते हैं कि देखते हैं कि वाकई फरिश्तों को गवाह बनाते हैं कि देखो ये गुनाह के बाद इतना डर रहा है, क्या उसको ये मुझसे डरता है, अल्लाह को तो सब पता है, हमें समझाना था। तो फरिश्ते कहेंगे अल्लाह पाक ये गुनाह का इसलिए हो रहा है कि इसके दिल में आपका बहुत खौफ है, इसको एहसास हो रहा है, डर रहा है। तो उन्होंने फरमाया कि बस इसका जो डर है इसकी वजह से मैंने इसकी मगफरत कर दी और मैंने इसको माफ कर दिया और मैं इसको बगाम नहीं दूंगा क्योंकि मैंने अपने इसके दिल में अपना डर देख लिया। तो अल्लाह पाक उसी पे कर्म कर रहे थे कि डरे तो सही, हम डरते ही नहीं है, डरते ही नहीं है, हम लगे रहते हैं लगे रहते हैं लगे रहते हैं। अल्लाह से जब बंदा बेखौफ हो जाता है तो फिर अल्लाह को गैरत आती है कि मेरे बंदे तू समझ रहा मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं हूँ मौजूद हूँ, तू शायद भूल गया है मुझे। फिर अल्लाह याद दिलाते हैं अलम यालम बि अन्नल्लाह यरा, अलम यालम बि अन्नल्लाह यरा, ऐ मेरे बंदे क्या तू नहीं जानता मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ। एक हदीस शरीफ में कि जहां तुम अकेले हो वहां मैं दूसरा हूँ, जहां तुम दो हो वहां मैं तीसरा हूँ, जहां तुम तीन हो वहां मैं चौथा हूँ। और दूसरी जगह अल्लाह ने क्या फरमाया, वहुआ माकुम अईना माकुंतुम, तुम जहां भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है, जहां भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। अल्लाह तो हर वक्त देख रहे हैं भाई, फरिश्ते हमारे साथ बैठे हैं, कंधों पे बैठे हैं, अल्लाह हमारे साथ है। गुनाह कहां से हम कर सकते हैं, गुनाह कर उस जगह, गुनाह कर उस जगह खुदा ना हो जिस जगह, एक बुजुर्ग फरमाते हैं गुनाह कर उस जगह खुदा ना हो जिस जगह, कहां भागेगा भाग के भाई, कहीं पर भी चला जाए अल्लाह अल्लाह साथ है। हाँ ऐसी जगह मिल जाए कि खुदा ना हो तुम गुनाह कर लो, अब जब खुदा सब जब मतलब ये कि जब हर जगह खुदा ही है और अल्लाह छुटकारा मुमकिन नहीं है तो गुनाह क्यों नहीं छोड़ देते। तो दो तरीके बता दिए गुनाहों से पाक होने के, एक तो वो मुश्किल खतरनाक तरीका है आदमी अपनी शान बना के रखे और किसी को कुछ ना बताए और गुनाह में लगा रहे फिर इंतजार करेगा पकड़ आ जाएगी उसकी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा, लेकिन कायदा कुल्लिया यही है। और दूसरा आसान तरीका भी बता दिए कि अच्छे वक्त में कोई परेशानी और बुराई आने से पहले पहले किसी शेख से अपनी इस्लाह करानी, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के अल्लाह करम फरमा देंगे तो इंशाल्लाह आफियत उससे मिल जाएगी। तो ये सारी जो बातें बताई जा रही हैं दुनिया और आखिरत में आफियत से रहने के लिए क्या वो अमाल है वो बताए जा रहे हैं। और रोजा ये अल्लाह बार बार हर साल रोजे भेज रहे हैं, लाल लोग उनके तकून लाल लोग, जितने उलमा मशाइख और अल्लाह वाले दुनिया में जितने भी बयान होते हैं रमजानों में ज्यादातर लोग यही आयत पढ़ते हैं, या लदीन आमन कुतिब अलैकुम सियाम कुतिब अला लदीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। और उसके ठीक है तशरीहात अलग अलग होती है, सब यही पढ़ रहे हैं आयत लअल्लकुम तत्तकून, लेकिन इसकी ब्रीफिंग उसकी तफसील तकवे के ऊपर जैसी बतानी चाहिए बहुत कम सुनने में आती है। लअल्लकुम तत्तकून का हम लोग सब मिज़दाक बने तो इंशाल्लाह काम बन जाएगा। और दूसरी एक हम लोगों में एक चीज अजीब बुराई देखी गई है कि जब गुनाहों की वजह से कोई पकड़ आती है माजी में, जैसे कोई गुनाह हमसे हुआ उसको अल्लाह की तरफ से कोई सजा मिली हमें, तो उस वक्त क्या होता है बार दफा नफ्स नरम पड़ जाता है और अल्लाह से अहद पैमान कर लेते हैं, तौबा इस्तगफार कर लेते हैं, रोते अल्लाह कहते हैं बस परेशानी से अल्लाह निकाल दे मैं वादा करता हूँ ये गुनाह मैं छोड़ता हूँ। होता क्या अल्लाह को प्यार आ जाता है, 70 मौत से ज्यादा प्यार करने वाले अल्लाह परेशानी निकाल देते, परेशानी निकाली चंद दिन तक सही रहे फिर दोबारा से नफ्स और घोड़ा हिनियाने लगता है, वो फिर भिदकने लगता है, तो फिर ताजा ताजा हराम गुनाहों का फ्रेश चारा देख के फिर हम वो खाने लगते हैं और पिछली मार को पिछली पिटाई को भूल जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, भूल जाते हैं ना, और ऐसा फिर 10 दफा होता है, फिर 20 दफा होता है, फिर 50 दफा होता है, फिर दोबारा पकड़ में आ जाते हैं, फिर फंस जाते हैं। तो भाई कब तक अपनी जान को मजाम में मुबतला करके रखेंगे, बार बार हम क्यों आजमाते हैं, पिछली मार को क्यों भूल जाते हैं हम लोग, क्यों ही हमें याद रहता है कि मैंने क्या क्या किया था और क्या क्या फिर मेरे साथ हुआ था, दोबारा उस सबक को हम क्यों दोहराते हैं। इसलिए भाई तकवे से रहने का तरीका यही उलमा और मशायख फरमाते हैं, किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक कायम कर लें, अर रहमान फसअल भी खबीर, अर रहमान की खबर उसके बाखबर से जाके पूछो, फरमाया ना अल्लाह ने कुरान पाक में, यहाँ हुक्म दे रहे हैं अल्लाह पाक, रहमान की खबर उसके बाखबर से जाके पूछो वो बताएंगे जो पहले से बाखबर है। या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, या ईमान वालों तकवा अख्तियार करो, तकवा मिलेगा व कूनू मअस्सादिकीन, जो सादिकीन है मुफस्सिरीन फरमाते हैं सादिकीन से मुराद अल्लाह वाले, उनकी इनका हाल और हर एक को उनकी सोबत में रह पड़ो इंशाल्लाह तक्वा नसीब हो जाएगा। आप असलम फरमा रहे तकवे की कानें उलूबुल आरफीन है, हर चीज की कानें होती है, मसलन जैसे सोना सोने की कान से निकलता है और कोयला कोयले की कान से आता, आप इरशाद फरमाया तकवा قلوب العارفین، تقوی کی کانے عارفین کے یعنی اللہ والوں کے قلوب ہیں، وہاں سے تمہیں تقوی ملے گا، یہ کتابوں سے نہیں ملے گا. کتابوں سے تو اعمال کی کمیت ملے گی، ان کی مقدار ملے گی کون سے اعمال کس انداز سے کرنے، اور یہ تقوی کو جو نور ہے عمل کی توفیق، یہ سینہ درویشہ ہے جس کو فارسی میں کہا جاتا ہے. اس لیے بڑے بڑے علماء اور مشائخ نے بھی، بڑے بڑے شیخ الحدیث لوگوں نے بھی اللہ والوں سے تعلق قائم کیا، اور ایسے اللہ باب اللہ والوں سے جو عالم بھی نہیں تھے. وجہ کیا ہے کہ وہ واصل باللہ تھے. وہ کتاب کا عالم ہونا مبارک ہے، بہت بڑی بات ہے. کتاب کا عالم ہونا الگ بات ہے اور اللہ کا عالم ہونا وہ الگ بات ہے. حضرت والا رحمت اللہ نے ارشاد فرماتے تھے، کتب خانے تو بہت ہیں اس آفاق عالم میں، کتب خانے تو بہت ہیں اس آفاق عالم میں، جو ہو اللہ کا عالم ملو تم ایسے عالم سے. یہی وجہ تھی تقی عثمانی صاحب کا تم اور مفتی رفیع صاحب، ان دونوں بھائیوں کو، ان کے والد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے بڑے خلفوں میں سے تھے، اپنے بچوں کو کہا تھا، دونوں بیٹوں کو، کہ تم لوگ مفتی ہو عالم ہو، میں تمہارا علم کا جو یہ ایک بعض دفعہ نفس اور شیطان بہکاتے ہیں کہ ہم عالم ہیں، مفتی ہیں، کیوں کسی سے جا کے اصلاح کروائیں، کہ ہمیں خود بہت علم کا پتہ ہے شرعی معاملات کا. بھائی فقہی مسائل الگ چیز ہوتی ہیں، اور وہ تقوی کے حصول کے لیے مشائخ کے پاس جایا جاتا ہے. تو ان کے والد نے ان دونوں کو ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ سے بیعت کرایا تھا. جب وہ بھی تھانوی صاحب کے خلیفہ تھے اور ہومیوپیتھک ایک ڈاکٹر تھے اور عالم بھی نہیں تھے، لیکن تھے کیا، وہی بات کہ واصل باللہ تھے، عارف باللہ تھے. وہ ہر آدمی عارف باللہ نہیں ہوتا، ہاں بزرگوں کی صحبت سے بہت سے لوگ عارف باللہ واصل باللہ بھی ہو گئے تھے. اگر کوئی عالم ہو مفتی ہو پھر وہ متقی بھی، اللہ والا بھی، پھر اگر فرماتے تو نور اعلیٰ نور ہے، ڈبل انجن لگے گا اس میں ماشاء اللہ، کہ علم کا نور بھی ہے اور تقوی کا بھی نور ہے ماشاء اللہ. اور فضیلت کسی کو نہیں ہے، کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے. خطبہ حجت الوداع میں آپ نے فرما دیا تھا، کسی گھوڑے کو کالے پہ، کالے کو گھوڑے پہ، عربی کو اجمی پہ، اجمی کو عربی پہ، کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو تقوی کی فضیلت حاصل ہوگی، ہے نا. یہ مشہور بات آپ نے فرمائی نا، فضیلت کوئی نہیں ہے، لیکن فضیلت اگر کوئی ہے صاحب، اگر واقعی کوئی فضیلت والا ہے تو وہ جس کو تقوی جس نے اختیار کیا ہوا. بس تقوی کی فضیلت بھائی اس کی بات کچھ اور ہے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ شرابی تھے، اللہ نے ان کو جذب فرمایا، اللہ کے ولی بن گئے، مجذوبیت ان پر تاری رہتی تھی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے دور کے ولی اللہ تھے، جب یہ جاتے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور بہت عزت احترام سے ملتے تھے. جب یہ چلے جاتے تو شاگرد بولتے تھے کہ آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، دنیا تو اسے پاگل بولتی ہے بشر حافی کو، آپ کے پاس تو بڑے بڑے لوگ آئے، بادشاہ وقت بھی آ گیا، آپ اٹھ کے نہیں کھڑے ہوئے، ان میں ایسی کیا بات ہے. تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تم نہیں جانتے میں خالی کتاب کا عالم ہوں، بشر حافی اللہ کا عالم ہے. لیکن یہ ان کی عاجزی تھی، ان کی ساری تھی، وہ خود عارف باللہ تھے. لیکن اللہ والوں کی شان ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو عارف باللہ ولی نہیں مانتے، دوسروں کو کہتے ہیں. تو یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے الفاظ تھے، ان کی کرامت تھی. جب یہ چلتے تھے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ تو ننگے پیر چلتے تھے، غلبہ حال تاری تھا، اور غلبہ حال مجذوبیت میں ہو جاتا ہے، قابل اتباع نہیں ہوتے مجذوب، منع کرتے ہیں علماء اور مشائخ، ہوتے مقبول ہیں لیکن قابل اتباع نہیں ہے. تو انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی تھی کہ جو زمین ہے یہ اللہ کا ایک فرش ہے، بس ان پہ ایک حال تاری ہو گئے، اللہ کا فرش ہے میں چپلیں نہیں پہنوں گا، جیسے مسجدوں کو چپلیں پہن کے جاتا ہے. یعنی اللہ کا اتنا زبردست ادب ان کے دل میں آیا، ان کو پوری زمین ایسی لگتی تھی کہ اللہ کا گھر ہے تو مسجد ہے، مسجد جیسی عزت کرتے ہیں. یہ غلبہ حال ہے اور مطلب ہی نہیں اس کی لوگ تقلید شروع کر دیں. تو یہ بھی چلتے تھے تو کہیں کانٹے، کہیں گندی غلط چیزیں، گو موت وغیرہ پڑا رہتا تھا، گوبر وغیرہ، تو لوگ دیکھتے تھے کہ جب یہ چلتے تھے تو خود بخود زمین شک ہوتی تھی، پٹتی تھی اور اس کے اندر جو غلاوت چلی جاتی تھی اور ان کے لیے رستہ صاف ہوتا تھا. تو جو اللہ پر فدا ہوتا ہے اللہ اس کا، پھر اللہ بھی اپنی محبوبیت کے جلوے دکھاتے ہیں. اس لیے آپ اس نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف ہے، یہ حدیث شریف ہے، ذہن میں بٹھا لیں، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. بس دونوں طرف سے اشارے ہو گئے، ہم تمہارے اور تم ہمارے ہو گئے. جب وہ اللہ پر فدا ہوئے، ان کو غلبہ حال رہتا تھا، تو پھر اللہ پاک زمین کو حکم دے دیتے کہ میرا پیارا آ رہا ہے، زمین صاف ہو جا، جن کو صاف اپنے اندر سمیٹ لے، کھینچ لے. اللہ جل جلالہ. بس بھائی ٹائم ہو گئے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو کامل تقویٰ نصیب فرمائے، رمضانوں میں بھی اور غیر رمضانوں میں بھی. لعلکم تتقون کا سچا ہم کو مصداق بنا دے. آخر میں حضرت والا رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے، پانچ اعمال بیان کر دیے کرو، بہت ضروری ہیں اور ان کا تعلق فرائض واجبات سے، ان میں سے نفلی کوئی چیز بھی نہیں ہے. اور یہ اختیاری مضمون نہیں ہے، کمپلسری مضمون ہے، پانچ اعمال جو ہیں پہلے قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور بغیر تجوید کے پڑھنا صحیح نہیں ہے، گناہگار ہوتا ہے انسان. تو ڈیڑھ دو مہینے کی محنت ہے کسی بھی قاری صاحب سے قرآن پاک کی تجوید درست کریں. اور دوسرا عمل جو ہے ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے، تھوڑی کے نیچے سے، دائیں سے اور بائیں سے مجھے بالکل باریک رکھیں. چاروں اماموں کا جمع ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے. اور تیسرا عمل ہے ماں السلام من القابین من الغارت النار، اوپر سے آنے والا لباس جس سے ٹخنے چھپیں گے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. مردوں کے لیے دو صورتوں میں ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے، جب ہم چل رہے ہوں کھڑے ہوں، چل رہے ہوں کھڑے ہوں، سب ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے. اور بغیر اس کے بیٹھے لیتے ہوئے بھلے چھپ جائیں، نماز میں تو اور زیادہ اہتمام رکھنا ہے ٹخنے کھول کے رکھنے. اور چوتھا عمل جو ہے وہ نظروں کی حفاظت کریں. قرآن پاک کی آیت ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجیے کہ باب نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اور خواتین مومن عورتوں کو بھی کہہ دیجیے کہ وہ بھی نظروں کی حفاظت کریں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اور اللہ نے ہر عمل کی وجہ نہیں بتائی لیکن نظروں کی حفاظت کا حکم دے رہے ہیں، اللہ نے آگے وجہ بتا رہے ہیں، حکم تمہیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تمہارا تزکیہ ہو جائے، تم پاک ہو جاؤ. بتائیے آپ نظروں کی حفاظت سے اللہ فرما رہے ہیں تمہارا تزکیہ ہو جائے گا، پاک ہو جاؤ گے باطنی طور پہ، اور جس کا تزکیہ ہو جاتا ہے ولی اللہ بن جاتا ہے. اور پانچواں عمل کیا ہے بھائی؟ پانچواں عمل ہے دل کو گندے خیالات سے بالکل پاک صاف رکھنا. جان بوجھ کے لانا جمانا وہ صحیح نہیں، شیطان ڈالتا رہتا الگ معاملہ، ذہن کو ہٹا لیں کسی کام میں مصروف کرنے جائے اس کام میں، لیکن جان بوجھ کے دل میں گندے خیالات نہ لے کر آئیں، تو نہیں تو چاروں مال کا جو نور ہوتا ہے وہ سب برباد ہو جاتا ہے. دل کو پاک صاف رکھیں اللہ کے لیے. اور پانچوں مال کی توفیق کسی بھی اللہ والے سے جہاں مناسبت ہو، لفظ مناسبت مانگا ہے بیٹھ کے، مناسبت کا مطلب ہوتا ہے اٹھنے کا دل نہ چاہے، باتیں دل پر اثر کریں، بس یہی مناسبت کی دلیل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد فائدہ ہوگا. نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ایک شعر کی شکل میں کہ دل نظر سے نظر ملی مگر دل سے دل نہ ملا، نظر سے نظر ملی مگر دل سے دل نہ ملا، عمر بھر ناؤ پر بیٹھے مگر ساحل نہ ملا. مطلب یہ کہ پھر مقصد مقصود حاصل نہیں ہوگا، مناسبت ہونا ضروری ہے، اخلاص اسی کا نام. اللہ پاک ہم سب کو ان پانچ اعمال قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، یا رب کریم یا رحم الرحیم. یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، کہنے سننے میں وہ غلطی کمی بیشی ہو دشانے رہے، مجھ سے بخش دے، معاف فرما دے. ہمارا مل بیٹھنا جو تیری رضا تیری خوشی کی نہیں ہے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اللہ، اللہ کی جو چاہت ہے لعلہم تتقون، اللہ ہم سب کو اس کو سچا مزداق بنا دے. یا اللہ ہم سب کو کامل تقوی نصیب فرما. جاہی باہی جتنے بھی گناہ ہیں اللہ، جھوٹ سے، غیبت سے، بد نظری سے، اور ٹی وی دیکھنے سے، موبائل کے خرافات سے، گندگی سے، تمام گناہوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرما. اور اچانک عافیتوں کے چھن جانے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی آخرت عطا، دنیا میں بھی عافیت عطا فرما، مرنے کے بعد بھی عافیت عطا فرما، عافیت دارین نصیب فرما. یا اللہ ہم تجھ کو تجھ سے مانگتے ہیں، جسے تو نہ ملا اسے کچھ نہ ملا. یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ تو جاننے والا ہے، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. یا اللہ جو بھی یہاں محروم نہ جائے دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما، جتنے بھی مفلس نادار غریب ہیں ان کو راحت سے غریب فرما، جتنے بھی مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ بالخصوص فلسطینی مسلمانوں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا رحم الراحمین، یا اللہ ان پر رحم فرما، یا اللہ ان پہ کرم فرما. یا اللہ امت مسلمہ کی بے غیرتی کو دور فرما دے. یا اللہ میں ایمانی غیرت عطا فرما. یا اللہ ان ملوموں کا، اسلام دشمنوں کا، یہودیوں کا اللہ ان کی پروڈکٹ کا 100% بائیکاٹ کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. یا رب کریم، یا اللہ ان اسلام دشمنوں کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ان کو تباہ برباد کر دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے، عبرت کا نشان بنا دے. یا اللہ انڈیا میں بھی مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، اللہ اللہ ان کو ہدایت دے. اللہ اگر باز نہیں آتے اللہ ان کو بھی تباہ برباد کر دے، ان لوگوں کو. تمام امت مسلمہ کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ رحم کے فیصلے پر، رحم کے فیصلے فرما دے. یا اللہ کرم کے فیصلے فرما دے. یا اللہ میرے والد صاحب کی اور میرے مرشدین کی اور ہمارے جملہ مرحومین کی، کل مومنین مومنات کی، کل جنات کی، اور میرے ساس سسر کی، سب کی کامل مغفرت فرما. سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله على خير امين ثم امين.